फेसबुक पर लाइव जो हो रहा है तो इसे एहतियात करें। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, मुअज्जज़ उलमाए इकराम के कहने पर मैं आपके सामने दो एक बातें अर्ज कर रहा हूँ। आज जो काम हो रहा है, जैसे प्रोफेसर मौलाना इकबाल साहब दामत बरकातहू ने फरमाया, एक तारीखी काम होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, जो हमारे बुज़ुर्गों और अकाबिरों की फिक्रों का नतीजा है। अल्लाह ताला जब काम लेने पर आता है तो गुमान से बाहर ऐसे लोगों से काम ले लेता है कि अक्लें हैरान रह जाती हैं। आपने शायद खिलाफत उस्मानिया के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। खिलाफत उस्मानिया का खाका किसने बनाया था? कोई उस जमाने के बड़े बड़े पॉलिटिशंस तो नहीं थे, बड़े बड़े कायद तो नहीं थे, उस जमाने के बड़े बड़े कोई मास्टर ऑफ सोशल वर्कर तो नहीं थे, उस जमाने के चरवाहों ने यह खाका तैयार किया था। बकरियां चराने वाले, उन्होंने एक खाका बनाया और सल्तनत उस्मानिया का खाका इतना मजबूत पेश किया कि शायद कोई मुल्क उससे मुतासिर न हुआ। मेरे भाइयों, अंग्रेज़ों की चाल की वजह से ये पूरी इमारत गिरी और हमारी कमज़ोरियों और गफलतों की वजह से ये इमारत गिर गई। अल्लाह काम लेने पर आता है तो जवान तबका को खड़ा कर देता है और ये अपने इल्म व हुनर के बलबूते पर ऐसा खाका पेश करते हैं कि अक्लें हैरान रह जाती हैं। मेरे भाइयों, हालात हमारे बुज़ुर्गों ने जैसे जैसे देखे और उसके मुताबिक हमारी रहनुमाई फरमाई, वो मेरे भाइयों आज हमको दिल पर लेने की ज़रूरत है। सन 47 का ज़माना, हर तरफ मायूसी छाई हुई थी, पाकिस्तान के अंदर भी मायूसी, भारत के अंदर भी मायूसी। लाखों लोग कत्ल हुए, लाखों लोग बेघर हुए और करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टीज तबाह और बर्बाद हो गई। कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने बेबसी और बेकसी के साथ मुसलमान पड़े हुए थे। चांदनी चौक से लेकर खैबर तक मुसलमानों की कतारें थी, रो रहे थे, गिरियाव जारी थी, मातम था। मेरे भाइयों, अगर ऐसे माहौल के अंदर मजबूत क़यादत न मिलती और अहले इल्म का बेहतरीन शुराई सिस्टम नसीब न होता तो शायद ये गोधरा जो हज़रत इमाम साहब ने बहुत कुछ तारीफ़ करके हमें बताया, ये गोधरा अपनी पोजीशन पर न होता। एक बेहतरीन क़यादत की ज़रूरत थी। अगर हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी और आपके साथी उस वक्त हालात से दूर होते और वो क़यादत को न संभालते तो मेरे भाइयों, यहाँ के मुसलमान तितर बितर हो जाते। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती के अंदर लिखा हुआ है कि आपके कमरे में दो उलमाए रब्बानीन तशरीफ़ लाए, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, आप तशरीफ़ लाए। आपके बाद मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। तीन अखंड भारत के तीन बड़े बड़े रहनुमा और लीडर एक छोटे से कमरे के अंदर बैठे हुए थे। 1947 के हालात उनके सामने थे, बातचीत हुई। शेखुल इस्लाम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा में मेरे बहुत से शागिर्द हैं, मदीना मुनव्वरा में मेरे रिश्तेदार हैं, सब मुझको दावत दे रहे हैं कि आप मदीना तशरीफ ले आएं और आप यहीं इकामत करें, आप यहीं मुकीम रहें, लेकिन मैं मदीना की पुर रौनक और मदीना की बाबरकत फिजाओं को छोड़ रहा हूँ हिंदुस्तान के हालात को देख कर। मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे मेरे मुरीदीन हैं, वो मुझे दावत दे रहे हैं, لیکن میں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی. حالات نے تقاضا کیا ہے، حالات نے دستک دی ہیں. اگر ایسے ماحول کے اندر منہ موڑ لیا اور میں نے میری قوم کو بے لگام چھوڑ دیا، پٹی کٹی پتنگ کی طرح چھوڑ دیا، اور ایسی کشتی کی طرح چھوڑ دیا جس کا کوئی ناخدا نہ ہو، تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ انہوں نے اس وقت تقاضے کو دیکھ کر کے بہترین شورا سسٹم قائم کی. آپ نے قوم اور ملت کی قیادت کی. اگر اس وقت مضبوط قیادت نہ ملتی تو شاید پروفیسر ڈاکٹر مولانا اقبال صاحب نے جو اسلامی مسلمانوں کے شہر کی بات کی، شاید وہ شہر اس ڈھانچے پر نہ ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم ولی کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ ولی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گھر سے، بیوی بچوں سے کٹ کر کے اپنی ذات کو بچانے کے لیے صرف مسجد میں رہ کر کے نفلیں پڑھتا ہو، اس کو ہم ولی کامل کہتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو قوم کے لیے راتوں کو بیدار رہتے ہیں، جو قوم کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ایک فقیر کی طرح اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور قوم کے لیے فکریں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سماج کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یاد رکھو، ولایت کا راستہ یہیں سے گزرتا ہے، مسجدوں سے نہیں گزرتا، گلی کوچوں سے گزرتا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنے سے راستہ گزرتا ہے. دہلی کے اندر جب کنگ التمش کی حکمرانی تھی، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بھارت میں کہ بھارت کے اندر اسلام پھیلانے میں جن بزرگوں کے سر پر سہرا جاتا ہے، ان میں سب سے بڑا مقام خواجہ معین الدین چشتی کا ہے. آپ کے پاس دہلی سے چل کر کے اجمیر ایک کسان آیا، کھیڑوت آیا، کہنے لگا حضرت التمش کے کارکن مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں، میری تھوڑی زمین ہے اس کو قبضہ کرنے کے لیے مجھے میرے گھر آتے ہیں اور مجھے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ التمش سے دو بول کہیں گے تو التمش اپنے کارکنوں کو روک لے گا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے اجمیر سے چل کر سفر کیا دہلی کی طرف، آپ کے بہت بڑے خلیفہ موجود ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. جب آپ کو پتا چلا کہ میرے شیخ تشریف لا رہے ہیں اجمیر سے، آپ بڑے بڑے وقت کے اہل اللہ کو لے کر کے شہر سے باہر نکلے، آپ نے استقبال کیا. حضرت اگر یہی بات تھی آپ مجھے کہہ دیتے، آپ مجھے کہتے تو میں وہاں تک بات پہنچا دیتا، آپ کو تکلیف لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے فرمایا وقت کے تقاضے کو میں نے دیکھا کہ اگر اس وقت معین الدین چشتی غفلت کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، نہ جانے کتنے ظالم پیدا ہو جائیں گے اور پھر قوم کیا کرے، قوم کی کس راستے پر جائے گی. میرے بھائیو، بزرگوں کی ہسٹری ہم پڑھتے نہیں، بزرگوں کی زندگی سنتے نہیں، بزرگوں کے واقعات پڑھتے نہیں. اس وجہ سے میرے بھائیو، جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں. جس کے بارے میں جو آیا کہہ دیا، بڑے سے بڑے معزز اور رسپیکٹڈ آدمی کے بارے میں جو مرضی ہوئی کہہ دیا. یہاں سب سے زیادہ ہے، اس شہر کے اندر سب سے زیادہ ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، اگر یہی بات رہی تو مدد کرنا تو دور کی بات ہے، تم کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ملے گا، تسلی دینے والا کوئی نہیں ملے گا اگر یہی حالت رہی تو. اس لیے میرے بھائیو قدردانی کریں، کام کرنے والے موجود ہیں، ہمارے پاس بھی کتنے آتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. میں تو کہتا ہوں تیرے اندر طاقت ہے یہ کام کرنے کی، تیرے اندر اگر طاقت ہو تو میں وہ کام تجھے دلا دیتا ہوں، اور اگر تیرے اندر طاقت نہیں تو اب ایک بھی مرتبہ ہمارے پاس مت آ، بس مرضی آئی کہہ دیا. اور جہاں دریا کی بات ہوتی ہے وہاں دیکھتے ہیں تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہوتا، پانی کا قطرہ اور کیچڑ بھی نہیں ہوتا، اتنا بڑا ایشو پیش کرتے ہیں، اتنی بڑی بات پیش کرتے ہیں. میرے بھائیو، ویسے تو ہر زمانے کے اندر مفت کے مفتی اور انگوٹھا چھاپ لوئر تو رہے ہیں، सबसे ज्यादा कौम को इस टोले ने नुकसान पहुंचाया है, कौमों को सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया, ऐसे अनपढ़ टोलों ने नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से बासलाहियत लोग मैदान छोड़ करके किनारा कशी करने के लिए मजबूर हो गए। मेरे भाइयों, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आज हालात को देख करके माशाल्लाह बड़ा मजमा है, पूरी कौम चाह रही है कि जिस फिक्र को लेकर हमारे बासलाहियत लोग, उलामा, बेहतरीन लॉयर्स, हमारे बेहतरीन स्टूडेंट्स, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे उन स्टूडेंट्स बच्चों का कि जो ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि कौम एक बेहतरीन रास्ते पर जाएगी। मेरे भाइयों, बकरियाँ जब अपने रेवड़ से अलग होती हैं तो जल्दी कुत्ते खा जाते हैं। ये चंद लोगों की मर्जी में ये आया कर लिया, ये आया कर लिया, इसमें बिल्कुल न सोचा कि कौम का क्या फ़ायदा है, लोगों का क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं देखा। मेरे भाइयों, एक बेहतरीन अगर रास्ता मिलेगा, अल्लाह तबारक व ताला ने बेहतरीन सलाहियतें दी हैं कौम के अंदर, बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं। आज मुल्क चीखता है स्किल इंडिया, स्किल इंडिया। आप जानो, स्किल इंडिया अगर देखना हो तो हमारे ये जो बच्चे शिमला पर काम करते हैं उनके अंदर स्किल इंडिया की सलाहियत है। हमारे टीचर्स तबका को देखो, बेहतरीन तबका है, अल्लाह ने इनको कैसी सलाहियतों से नवाजा। हमारे पास बेहतरीन लॉयर्स हैं, हमारे पास वक्त के बेहतरीन उलमा हैं कि जिनके अंदर मौलाना हिफ्जुर रहमान सुहार भी जैसा हुनर छुपा हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे हुनर छुपे हुए हैं, ऐसे बासलाहियत जो कौम की बेहतरीन क़यादत कर सकते हैं और बेहतरीन कायद बन सकते हैं, ऐसे उलमा अल्लाह ताला ने हमको दिए हैं। ये तो कदर नहीं हमको। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब की ज़रूरत, अगर हमने यहाँ पर एक बेहतरीन मॉडल पेश किया, इंशाल्लाह पूरे मुल्क के लिए एक बेहतरीन नमूना बनेगा, बेहतरीन नमूना बनेगा और मुल्क वाले हमसे सबक हासिल करेंगे। इसमें जो फंडामेंटल उसूल हैं, अगर इन फंडामेंटल उसूलों की रियायत की गई तो मेरे भाइयों, एक दिन आएगा कि अल्लाह तबारक व ताला पूरी उम्मत के लिए जरिया बना देगा, पूरी उम्मत के लिए एक निशान बना देगा। और याद रखना चाहिए, कोई भी संगठन, कोई भी जमात, कोई भी पार्टी फंडामेंटल उसूल से हटकर चली है, वो गिर गई है, वो गिरी है। आप दुनिया के बड़े बड़े संगठनों को देखो, मैं नाम लेना नहीं चाहता मस्जिद में रह करके, इन्होंने वक्त के सबसे बेहतरीन मास्टर ऑफ सोशल वर्कर को लिया, इनकी सलाहियतों को माना और उनकी सलाहियतों को कबूल किया, उनसे खिदमतें ली, तो आज पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन बनकर वो उभरे। हमारे पास वो सलाहियत मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे जवानों से काम लेगा, हमारे पढ़े हुए बच्चों से काम लेगा, हमारे उलमा से काम लेगा। अब मेरे भाइयों, टांगे खींचने का ज़माना नहीं है। कब तक टांगे खींचेंगे? हम टांगे खींच रहे हैं और कौमें आगे जा रही हैं, कौमें तरक्की कर रही हैं, हम खाली बातों तक रह गए, बातों तक रह गए, कौमें तरक्की करके आसमान को छूने लगी। इसलिए मेरे भाइयों, अब हम हरेक का एहतराम करें, काम करने वाले जो लोग हैं उनकी कदर करें। बाकी हमारे मुअज्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी मौजूदगी में बोलना तो, लेकिन मैं इस नीयत से बोल रहा हूँ जैसे कि अंजुमन का जलसा होता है, एक तालिब इल्म आ करके तकरीर सुनाकर चला जाता है, उसको नंबरात दिए जाते हैं, मैं तो इसी नीयत से बोल रहा हूँ, मैं और आप ही से मैं मुखातिब हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हमारी फ़िक्रों को कबूल फरमाएँ, आप लोगों की फ़िक्रों को कबूल फरमाएँ, और जिस काम को लेकर के हम उठे हैं, अल्लाह तबारक व ताला इस काम में हमारी मदद फरमाएँ।
पहले भी शिक्षा के बारे में